संबंध जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। व्याख्या यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, ये धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवा दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी रहती है, अर्थात ध्यान करते समय साधक अपने को ध्याता माने ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापन भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति को भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है, इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती हैं तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज, जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सभी समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर उनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहां निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है, जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तो बहुत विलक्षण आनंद आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता है। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उपरमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती है, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से उपराम हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है। कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है, तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती है। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव। मन आत्मा में नहीं लगता, प्रत्युत उपराम हो जाता है, कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति है और आत्मा परा प्रकृति है। इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत स्व संवेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वो वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख होने पर ही होती है। यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, प्रत्युत वह भी साधन हो जाता है, परंतु साधक उसमें ही संतोष कर लेता है, पूर्णता मान लेता है, तब ये चीज बाधक हो जाती है। यहां जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई है उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्मयोग से भी बताई है। अंतर इतना है कि ध्यान योग तो कर्ण सापेक्ष है पर कर्म योग कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और उसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है।